नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कहा है कि विपक्ष द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पराजित करने के बाद भारत की महिलाएं उन्हें भ्रूण हत्या के पाप के लिए कड़ी सजा देंगी। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिलाओं से क्षमा मांगी और कहा कि सरकार भले ही मतदान हार गई हो, लेकिन वो महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने संबोधन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया और कहा कि सरकार के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ाकर छोटे या बड़े प्रत्येक राज्य की आवाज को मजबूत करना था, लेकिन इस ईमानदार प्रयास को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विफल कर दिया।
हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत के उनकी ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ली जे म्योंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया, झाईग्राम और अन्य जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उधर तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज इरोड जिले के शिवगिरी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तरी जिलों में प्रचार किया। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के लिए कोयम्बटूर, तिरुपुर और नीलगिरी में चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की एक बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा और भारत की तैयारियों का आकलन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति अनिश्चित और अस्थिर है, इसलिए भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय जहाजों और माल को जोखिम भरे समुद्री मार्गों से गुजरते समय भी किफायती बीमा मिलता रहेगा। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में हुई वार्ता का विवरण दिया है। उन्होंने अमेरिका के बारूदी सुरंग निरोधक पोत से जुड़े तनावपूर्ण गतिरोध का उल्लेख किया। एक टेलीविजन साक्षात्कार में गालिबफ ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक गतिविधि को लेकर अमरीका के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विरोध किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज ईरान के नियंत्रण में है। गालिबफ ने कहा कि तेहरान जलमार्ग में बारूदी सुरंगों को हटाने के अमरीका के प्रयासों को युद्ध विराम का उल्लंघन मानता है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से होगा। वहीं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज डर्बन में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। शूटिंग में एशियाई खेलों के पदक विजेता शिव नरवाल और शॉटगन निशानेबाज सबीरा हारिस आज से काहिरा में शुरू हो रहे ISSF जूनियर विश्व कप में 71 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।